हरे कृष्णा। तो श्रीमान स्वराज गोवन के घर पे आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की ओर से पूर्णिमा माता जी और स्वराज गोवन प्रभु और ये चैतन्य और कृष्ण भावना हरे कृष्ण परिवार आज सबके लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा का आयोजन किया है। आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। ये महीना दिसंबर का शुरू हो गया है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता प्रकट हुई थी। गीता जयंती का महीना है। पूरी दुनिया में इस महीने में भक्त अधिक से अधिक गीता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। केवल मेरे ख्याल में एक दिल्ली में नहीं तो भी मोर देन 300,000 गीता डिस्ट्रीब्यूट होंगी इस महीने में। बॉम्बे और दिल्ली मिलाकर मोर देन 500,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जितने लोग रहते हैं मॉरिशस में इससे ज्यादा गीता सिर्फ इंडिया में इस महीने में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सो दिस इज ए स्पेशल एक बहुत महत्वपूर्ण महीना है गीता जयंती, भगवद गीता की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का। यहां नहीं होता है नहीं गीता मैराथन मैराथन गीता मैराथन मैराथन का मतलब प्रभुपाद समटाइम्स आप आधा घंटा बोलोगे क्या फर्क पड़ता है। पीपल विल फॉरगेट दिस बट यू गिव योर बुक इट विल चेंज देयर लाइफ। लास्ट टाइम एक साल से ऊपर हो गया, मैं यहां अगस्त सितंबर में आया था, एक साल हो गया उधर बैठा था, आप लोग यहां बैठे थे, मैंने क्या बोला था बताओ? मेरे को याद है मैंने बोला था मॉरिशस में सब लोग रोज तुतबुश करते हैं, आपने कहा था ना क्यों करते हैं? दांत साफ करने के लिए। तो दिल कैसे साफ करोगे, मन कैसे साफ करोगे, अंदर कचरा भरा हुआ है, आपके पास कोई साफ करने का साधन है? मैंने ये कहा था आपको याद है, आपको भूल गए। तो ये बातें बहुत पुरानी भूल जाते हैं, लेकिन किताब लिखे हुए हैं तो कभी नहीं भूलते। इसलिए बुक्स आर दी बेसिस, पुस्तक ही हमारा आध्यात्मिकता का फाउंडेशन है। तो अधिक से अधिक पुस्तक को समझने का प्रयास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। मीनिंग ऑफ योर रीडिंग, व्हाट इज योर रियलाइजेशन? पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपका अनुभव क्या है? व्हाट इज योर रियलाइजेशन? आपका पर्सनल अनुभव क्या है? सो दिस बुक्स आर फॉर अस टू रियलाइज, हमारे को अपने जीवन का लक्ष्य अनुभव करने के लिए। अनुभव मीन्स रियलाइजेशन। सुविराज जी कह रहे थे कि आज पुरानी एक कथा पांडवों के जमाने की युधिष्ठिर महाराज की को पुनः बताने का जो है वो सेवा बताया है हमको। आप में से जिन्होंने सुनी है तो दोबारा सुन लीजिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज है। कौन है? धर्मराज है। पहले भी कभी हमने आपको बताया है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। ये 9th चैप्टर का श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु नमो द्वेषु अस्ति न प्रिय। मैं सबसे संभावना रखता हूं, आई एम इक्वल टू एवरीबडी, नोबडी इज नीड टू डियर टू मी एंड नोबडी आई हेट। कोई मुझे प्रिय नहीं है, किसी में द्वेष नहीं करता। और इस पहली लाइन का सिद्धांत भगवान ने स्थापित कैसे किया, इस्टेब्लिश की दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स। कैसे? पांडवों को युधिष्ठिर धर्मराज दिया, पांडवों के पक्ष में आने साइड ऑफ पांडव, युधिष्ठिर वाज दी धर्मराज, जो यमराज है, जो धर्मराज है, जो धर्म का हिसाब करता है सबका, जो कैलकुलेशन करता है, उसके अंश से युधिष्ठिर महाराज का प्रकट्य है मां कुंती के पास। देवता का पुत्र है, देव अंश से उत्पन्न हुआ है, और कौरवों को भी भगवान ने धर्मराज दिया विदुर के रूप में। विदुर भी धर्मराज है, वही धर्मराज है विदुर भी। दोनों को भगवान ने बराबर धर्म दिया कि नहीं दिया? फॉर गाइडेंस ऑफ बोथ भगवान ने दोनों को धर्म किया मार्गदर्शन के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप लाभ कितना लेते हो। पांडव देवर वेरी मच ओबलाइज टू युधिष्ठिर महाराज। पांडव जो युधिष्ठिर कहता था उनके साथ करने को तैयार थे, महाराज युधिष्ठिर ने कुछ भी कह दिया सब मानने को तैयार थे। तो उनकी पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हो गए। जो धर्म की बात मानता है भगवान उनके साइड में होते हैं। धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा भगवान करता है धर्म के रूप में। धर्म तो साथ साथ भगवान स्वयं है, धर्म का अधिष्ठाता भगवान ही है। कौरवों के पास धर्म था ये विदुर के रूप में, लेकिन उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। विदुर अच्छे से अच्छा एडवाइस देता है फिर भी कोई नहीं सुनता है। दुर्योधन उसका तिरस्कार किया, धर्म का अपमान किया और सब कुछ नाश हो गया। तो भगवान ने दोनों को दिया कि नहीं दिया? सम ही गेव इक्वल बेनिफिट टू बोथ, लेकिन एडवांटेज कौन लेता है? तो भगवान धर्म दोनों को दिया। तो धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र भी बहुत विलक्षण है और विदुर का चरित्र भी बहुत अद्भुत है। विदुर का पास्ट टाइम बहुत ही स्पेशल है। पहले तो ये है कि वो पांडवों की रक्षा की है, ऑल द टाइम ही प्रोटेक्टेड पांडवस। धर्म भगवान के भक्तों की रक्षा करता है, धर्म का काम है भगवान के भक्तों की रक्षा करना। सो विदुर वॉज ऑल द टाइम प्रोटेक्टिंग पांडवस फ्रॉम द क्रिमिनलिटी ऑफ दुर्योधन। दूसरा, विदुर धर्म मान अपमान से ऊपर होता है। धर्म मान अपमान से ऊपर होता है, पर्सनल मान अपमान। हाँ, किसी को सम्मान दे दो, किसी का अपमान कर दो, गिव समबडी हाई रिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड समबडी, धर्म इज बियॉन्ड दैट। धर्म इससे बहुत ऊपर है। जिस घर से विदुर अपमानित होकर निकाला गया था, ही वाज ड्रिवन आउट by Duryodhan disgracefully from the assembly of Kaurava, जिस घर से अपमानित होकर निकले थे तीर्थ यात्रा करने के बाद, उसी घर में वापस उसी धृतराष्ट्र को मुंह से निकालने के लिए और सीधे रास्ते पे लगाने के लिए लेने आए हैं। ये साधु की पहचान है। ये जो धर्म के ऊपर चलता है, जिस घर से निकाला गया था उसी घर में उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए वापस आया विदुर। कैन यू सी दिस स्ट्रेंथ थिंग? हाँ, जहां से उसको निकाला गया था, ही वॉज कंप्लीटली डिसरेस्पेक्टेड, डिसग्रेसली ड्रिवन आउट। जहां से निकाला गया उसी घर में उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए वापस आया। साधु किसी से द्वेष नहीं करता, डिसरेस्पेक्ट कोई दे फिर भी उसका उद्धार करता। ये विदुर का बहुत बड़ी शिक्षा है। उसके घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल के गए थे बिन बुलाए, विदाउट इन्विटेशन। कृष्णा एंटर विदुर्स हाउस। 56 भोग दुर्योधन के त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन कहा श्री कृष्ण को, आइए आइए हमारे घर में भोजन कीजिए, 56 भोग का प्रबंध किया है। श्री कृष्ण से क्या कहा भगवान ने? भोजन कहां करना चाहिए? जहां कोई प्रेम से खिलाए। और दूसरा, नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, कुछ भी कहीं मिले तो खा लेना चाहिए. ओनली टू रीजन्स समबडी कैन टेक प्रसाद समवेयर. और कृष्ण का प्रेम तो आपके पास नहीं है और भूखा मैं भी नहीं हूं, इसलिए आपके घर नहीं खाऊंगी. किसी के घर भोजन खाने के लिए दिस इज ए प्रिंसिपल कृष्ण हैज सेड. ये भगवान श्री कृष्ण ने यह नियम बनाया है किसी के घर भोजन कब खाना चाहिए. या तो प्रेम से बुलाए, या तो इतना भूखा है कि नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, किसी का भी मिले तो खा लूंगा. तो प्रेम से बुलाए तो खाना चाहिए. और विदुर के घर में भगवान श्री अकेले चले गए अपने आप, बिना पूछे बिना बुलाए. तो ये विदुर की महानता है. और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज, उसको भागवत में हरिदास वर्य कहा गया है, भगवान के भक्तों में महान भक्त है. भगवान के भक्तों में महान भक्त. भगवान जब कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भगवती बात अभिवर्ता न धर्म से तथा आत्मान सृजाम्य, मैं धर्म की स्थापना करता हूं. तो भगवान ने धर्म की स्थापना कैसे की? धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया, ये धर्म की स्थापना की. बस धर्म यही तो धर्म था. अधर्म रूपी दुर्योधन और उसकी पार्टी को हटाकर और धर्म रूपी धर्मराज युधिष्ठिर को स्थापित किया, यही तो धर्म की स्थापना हुई. ये श्लोक एग्जैक्टली भगवान ने धर्म की स्थापना कैसे की, धर्मराज को राजा बनाया और अधर्म रूपी दुर्योधन और उसके सारे साथियों को नाश किया. ये धर्म टू वर्स एक्सप्लेन, इनका साधुओं की रक्षा की, अधर्मियों को नाश किया और धर्मराज को स्थापित किया. तो ये धर्मराज जिसको भगवान ने स्थापित किया था, उसका ये नियम था, रोज भगवान का ध्यान करते थे 2 घंटे के लिए. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि जब धर्मराज जो धर्म का नियम पालन करता है वो भी 2 घंटे भगवान का ध्यान करता है, तो हमको भी रोज 2 घंटे बैठकर भगवान का नाम जपना चाहिए. और वैसे भी 16 माला जपने में 2 घंटे लगते हैं. तो युधिष्ठिर उस जमाने में 2 घंटे भगवान का नाम ध्यान करता था. युधिष्ठिर एट दैट टाइम एवरी डे 2 आवर्स ही वॉज सिटिंग डाउन इन मेडिटेशन ऑन कृष्णा एवरी डे. कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए? चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा ध्यान कहां है? टीवी देख रहा है, वेरी नाइस, हरे कृष्ण राम, वेरी गुड वेरी गुड. बहुत से भक्त को हमने देखा है चलता रहता है. युधिष्ठिर महाराज जब ध्यान करते थे तो एक पर्दा लगा देते थे, कर्टन, और कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, 2 घंटे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, 2 घंटे मैं सिर्फ भगवान को देता हूं. दिस इज माई अपॉइंटमेंट विथ गॉड, ये मेरी भगवान के साथ मुलाकात है, अपॉइंटमेंट है, भगवान के साथ बैठना है, तो और कोई आदमी मुझे डिस्टर्ब न करे. एवरी डे 2 घंटे रोज भगवान का ध्यान, तो कोई मुझे डिस्टर्ब न करे. लेकिन राजा हो आप, महाराज, कोई भी किसी वक्त आपको आके पूछ सकता है. एक साधु बनना, राजा बनना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी कभी भी आ सकता है. मंदिर में कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको. साधु को कोई बुलाएगा उसको जाना पड़ेगा, कोई आएगा तो बात करनी पड़ेगी. हाँ, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है. यू कैन नॉट हैव योर ओन लाइफ, यू आर कंप्लीटली गिवन योर सेल्फ टू पब्लिक. हमारा घर क्या है? साधु का घर क्या है? वो पूरी दुनिया मेरा घर है. मेरा घर है ही नहीं कोई, और सारी दुनिया मेरा घर है. अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ भगवान का है, वो हमारा. तो महाराज ने नियम क्या बनाया था? एक ये नियम बना हुआ था युधिष्ठिर महाराज के राज में, धर्मराज के. कंप्लेन करने वाला आए तो उसी वक्त उसको बुलाना चाहिए और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. एक बेल लगा हुआ था बाहर, जैसे आज काल बेल है ना, मंदिर में बड़ा घंटा होता है, वो घंटा लगा था. कोई घंटा बजाता, बेल रिंग किया, उस आदमी को बुलाया जाता था, पूछा था तुम्हारे से क्या समस्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये नियम था, किसी को वेट नहीं करना था। जैसे आज की कोर्ट की तरह कई साल बीत जाते हैं, बाप मर गया जिसने केस किया था, बेटा भी उसका केस अभी तक लड़ रहा है, कई साल लग जाते हैं। ये दिस इज बस नॉनसेंस। हमने मूर्खता देखी है, यहां तो आपके पास नहीं है। वृंदावन से मथुरा 5 रुपये टिकट है ट्रेन का, साधु टिकट नहीं लेते, चढ़ जाते कभी तो कभी पुलिस उसको पकड़ती है। 5 रुपये का टिकट नहीं लिया, पुलिस ने पकड़ा, 1 महीने के लिए जेल की सजा है, 1 मंथ। 1 महीने में गवर्नमेंट ने उसको 1500 रुपये का भोजन खिलाया, 1500 रुपये का भोजन खिलाया, रहने की जगह दी, बिजली का खर्च किया किसके लिए, 5 रुपये के लिए। तो गवर्नमेंट को मिला क्या? वो तो उसको तो वैसे ही बाहर पहले ही मुफ्त का मिलता था, मुफ्त का यहां मिल रहा है, पहले मांगना पड़ रहा था, अभी अपने आप मिल रहा है। हाँ, उसको परेशानी क्या हुई? मैं उस दिन कहीं बता रहा था, यहां एक आदमी चोरी करता था स्कूटर की, फिर उस आदमी को ही फोन करता था जिसका स्कूटर था, बोला तुम्हारा स्कूटर मेरे पास ले जाओ, 25-50 रुपया दो। तो नहीं मिलता था तो फिर जेल में जाता था, बोला रोटी तो कहीं से खानी है। तो हमने कहा 5 रुपये के लिए इसको पकड़ते हो, नहीं अगर लिया है तो इसका दंड ये होना चाहिए कि वही स्टेशन के ऊपर उसको झाड़ू दो कि आधा घंटा यहां सफाई करो। आप सफाई वाले को 5 रुपये खर्चा देते हो ना, तो तुम्हारे 5 रुपये मिल गए, जाए वापस, तुम कैसे मेहनत करेंगे, इससे काम लो ना, तुम गवर्नमेंट के 15 रुपये क्यों खराब कर रहे। बुद्धिमानी का ला है क्या ये? इज देयर एनी इंटेलिजेंस इसमें? इतना टाइम खराब करते हैं केस। युधिष्ठिर महाराज का नेम था, अभी आए अभी उसका फैसला करो, लाइट नाउ, नो वेटिंग। तो महाराज तो 2 घंटे जब भगवान के ध्यान में बैठेंगे तो कौन देखभाल करेगा? तो 4 भाइयों को कहा था, चारों दरवाजों पे कोई भी कहीं से आए, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू सॉल्व इट, कोई आए कोई समस्या लाए तो एकदम उसका समाधान करना। अब ये समय कौन सा है? महाराज युधिष्ठिर ने 33 ईयर्स राउंड अबाउट राज किया। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण भगवान 30 ईयर्स रहे और 33 ईयर्स के बाद भगवान अपने धाम चले गए, जाने की तैयारी की। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी राज छोड़ दिया। सो ओनली दिस महाभारत युद्ध के बाद राज केवल धर्मराज 30 ईयर्स किया, 33 ईयर्स किया। तो श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि ब्रह्मा जी और ऋषि और सब आए भगवान श्री कृष्ण के पास। ब्रह्मा जी ऊपर ही खड़े होके अपने वाहन हंस के ऊपर भगवान को प्रार्थना की कि हमने आपको जिस काम के लिए बुलाया था वो काम तो पूरा हो गया है, अब आप जब चाहो तब अपने धाम वापस आ सकते हो। सो ब्रह्मा एक्चुअली रिक्वेस्ट कृष्ण, भाई हमने आपको देवताओं ने प्रार्थना की थी, धरती का भार उतर गया, अब आप वापस आ जाए, आना चाहे तो आइए और जब जाए तब तो हमारे धाम से भी होते जाइएगा। तो दे केम फॉर दिस पर्पस। ऐसे रामायण में भी कथा हमको मिलती है कि जब भगवान रामचंद्र के जाने का समय आया तो एक व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए आया और उसने आके कहा कि मैं आप भगवान राम से बात करना चाहता हूं। लक्ष्मण को कहा और लक्ष्मण ने कहा ठीक है, और जब भगवान के पास बैठा जाके बात करने के लिए तब कहा अब हम जब बात कर रहे हैं तो कोई अंदर दूसरा नहीं आना चाहिए, अगर कोई अंदर आएगा तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। राम जी उनसे बात कर रहे थे, लक्ष्मण बाहर खड़े थे, कोई अंदर ना जा सके, दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने आते ही कहा कि राम जी से मिलना है। लक्ष्मण कहते हैं महाराज थोड़ा प्रतीक्षा करें, अंदर कोई मिल रहा है अंदर जाने का भी। राम को रोकते हैं, साधु को कोई रोकता है भानु राजा से मिलने के लिए? हम सबके सब नाश कर देंगे। हाँ लक्ष्मण का है, वैसे तो मैं अकेला, मुझे अकेले ओनली आई विल बी कंडेम टू डेथ, नहीं तो पूरा सूर्य वंश को नाश कर देगा ये दुर्वासा। तो अंदर चला गया राम जी के पास। तो जो बात करने वाला था वो तो वहां से उठने लगा, लेकिन राम जी का ये हमारे बीच में आया है, इसको आपको मृत्यु दंड देना है। तो कौन था वो पर्सन, वो कौन आदमी था जो भगवान राम से बात कर रहा था? काल आया था साक्षात, जब आप चलिए वापस, आपका समय समाप्त हो चुका है यहां का, आप अपने धाम चलिए। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण को परित्याग किया और फिर राम जी भी अपने धाम जाने की तैयारी की सारे अयोध्या वासियों को। भरत ने कहा मैं नहीं रहूंगा, चलूंगा। शत्रुघ्न को मंगाया मथुरा से, शत्रुघ्न ने आते ही कहा मुझे यहां रहने को मत कहना, हम आपके साथ जाएंगे। तब चारों भाइयों के बच्चों को पूरी धरती का राज देके राम जी अपने सारे अयोध्या वासियों के साथ सरयू के माध्यम से, सरयू नदी के माध्यम से अपने धाम चले गए। तो आज एक व्यक्ति हस्तनापुर में दौड़ता हुआ आया, पहले दरवाजे के ऊपर भीम खड़ा था, आके कहा महाराज युधिष्ठिर से मिलना है, महाराज युधिष्ठिर से मिलना है, जल्दी मिलना है। उसने कहा महाराज इस वक्त भगवान के ध्यान में मैं खड़ा हूं, आपका कोई समस्या है तो मुझे बताइए, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने कहा तो सुनो, मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने देखा एक खेत था, खेत समझ रहे हैं ना, एक खेत था और खेत को चारों ओर से बाढ़ दी हुई थी। बाढ़ समझते हैं, खेत को देते हैं भूमि, बाढ़ नहीं समझते हैं, फेंसिंग क्यों करते हैं फेंसिंग खेत को, के अंदर कोई कोई पशु, आजकल तो दो पाव वाला पशु ज्यादा खतरनाक है, चार पाव वाले पशु का खतरा नहीं है, चार पाव वाला जाएगा थोड़ा खा के जाएगा, दो पाव वाला जाएगा सबको उठा के जाएगा। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हरिदास बॉम्बे में, बड़े अद्भुत हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं कि मैं तो अच्छा आदमी तो था ही नहीं, जेल में ही था। मैं एक मैगजीन में देखा प्रभुपाद के हाथ में बहुत सुंदर घड़ी फॉरेन की, तो मैंने कहा यहां से छूटूंगा तो ये घड़ी चोरी करनी है, और डूलते डूलते जुगों में आया कि कहां वो घड़ी वाला है बाबा, और घड़ी चोरी करने के लिए आया था, लेकिन यहां ऐसा आया कि भक्त बन के हुआ रह गया, घड़ी तो घड़ी साधु बन गया। वो बता रहे प्रभुपाद जी मुझे कहा कि रात को वो जब उठ के एक बजे लिखते थे भागवत, तो मुझे कहते ये कुत्ते भोंग, जब थोड़ी देर पहले कुत्ते भोंग रहे थे ना, बोले ये कुत्ते मुझे डिस्टर्ब करते हैं, इनको भगाया करो। तो वो प्रभुपाद उठते थे, ये रात को बैठ के चौकीदार करके कुत्तों को भगाता था। तो प्रभुपाद जब वहां से जाने लगे और कहीं बाहर, तो इसने कहा प्रभुपाद अब मेरी सेवा, बोले नाउ यू चेस टू लेग डॉग्स, अब दो पांव वाले कुत्ते जो यहां के भाव भोग करते हैं इनको भगाया करो। अभी हम तुम्हारी सेवा ये है कि बहुत से लोग मंदिर में ऐसे आते हैं। तो ये फेंसिंग जो खेत को देते हैं ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है पुराने जमाने में, अभी तो कुछ है भी नहीं। हर एक घर के अंदर चार गाय होती थी, अब यहां केरल गांव में कितने घर होंगे, हाँ इस विलेज में कितने हाउस है, 400 हाउस, 400 × 4 1600 काउस। अब 1600 काउ बाहर जाएंगी तो खेत में अंदर जाएंगी ना, तो खेत तो खराब कर देंगी, तो इसलिए खेत को फेंसिंग करते थे कि कोई अंदर एनिमल न जाए, और जब खेत काटते थे तो खोलते थे एनिमल आए, ताकि एनिमल वो काउ डंग करेगा वो मैन्यूअर है तो हमारा लाभ होगा। कटने के बाद और कुछ जमीन छोड़ी होती थी, उसका नाम था गौचर। अभी भी भारत में बहुत सी ऐसी लैंड है उसका नाम है गौचर, मतलब गाय के चरने के लिए, फॉर ग्रेजिंग ऑफ द काउस, उस लैंड का नाम ही गौचर है, और थाउजेंड्स ऑफ एकर लैंड होती थी गांव के पास सिर्फ गायों को चरने के लिए, किसी का खेत नहीं था, इट वॉज फ्री फॉर काउस, उसका नाम ही गौचर हुआ करता था। तो खेतों को बार दिया हुआ था फेंसिंग का। अब वो आदमी कहता है मेरे को महाराज से यह पूछना है फेंसिंग क्यों लगाई थी खेत को, व्हाई देयर वाज अ फेंसिंग अराउंड द फील्ड, टू प्रोटेक्ट द फील्ड। बट आई सा फेंसिंग वॉज डैमेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द फील्ड, खेत को बाढ़ खा रही थी। अरे भीम 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 भीमसेन बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भाई फेंसिंग बाढ़ खेत को कैसे खाएगी। मैंने देखा वो खेत को डिस्ट्रॉय कर रही थी, फेंसिंग और डिस्ट्रॉइंग द फील्ड। ये मैंने पका कोई समस्या होती तो हम उसका समाधान करते, कोई असुर होता तो हम उसका सर गदा मार के फाड़ देते, लेकिन ये तो इसका तो कोई समाधान महाराज ही कर सकते हैं, आप चलिए आगे। तो दूसरे दरवाजे पे अर्जुन खड़े थे, महाराज से मिलना है, महाराज भगवान के ध्यान में अभी एक डेढ़ घंटा लगेगा। नहीं नहीं हमें बहुत अर्जेंट है, पर मैं खड़ा हूं, मुझे बोलो सेवा क्या है, बोलो सेवा है तो सुनो। मैं आ रहा था रास्ते से, मैंने देखा एक आदमी कुएं से पानी निकालने गया, कुआं समझती हो, वेल, पानी निकालने गया, एक बाल्टी पानी का निकाला, एक बकेट, और बाहर नाइन और पाठ थे, मटके थे, भर गए। बहुत अच्छा, कोई बड़ा बाल्टी होगा तब नौ बर्तन मटके भर गए। बोला ये तो ठीक है, लेकिन फिर नौ के नौ मटके वापस उस बकेट में डाले, बकेट आधा भी नहीं था। व्हाट इज दिस, वही बकेट से वही बाल्टी से नौ मटके भर गए, फिर नौ के नौ मटके वापस बाल्टी में डाले, बाल्टी आधी भी नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये क्या, कि वह सुबह अकेला आया, शादी के बाद अकेला क्या बात है, सुबह अकेला आया शादी के बाद, हाँ दूसरे रास्ते से आती, अभी जो रास्ते अभी जो अपने रास्ते अलग अलग कर दिए। अच्छा है, मर्यादा है, ये भारत की पुरानी मर्यादा है, स्त्री पीछे से आए तो ठीक है, पब्लिक के अंदर वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऐसे आ गई पीछे, हाँ